हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 272 आदित्य का विला। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद से ही सुनैना थोड़ी सी व्याकुल लग रही थी। उसने रास्ते में आदित्य से ज्यादा बात नहीं की थी, वो किसी बात को लेकर परेशान थी। आदित्य ने ये बात आते ही नोटिस कर ली और एक बार इस बारे में पूछा भी, लेकिन सुनैना जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, सब ठीक है, मैं बस तुम्हारी तबीयत को लेकर परेशान थी। सुनैना ने मुस्कुराते हुए ये बात तो बोल दी, लेकिन आदित्य को उसकी इस बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर उसने भी दोबारा बार बार सुनैना से वही सवाल नहीं किया। उसे पता था कि जब कोई कुछ बताना नहीं चाहता और सामने वाला वही सवाल करता रहे तो वो बहुत ही कष्टदायक लगता है। इसलिए उसने सुनैना को थोड़ा समय दिया। उसे लगा कि कुछ देर बाद सुनैना खुद ही उसे बता देगी, इसलिए आदित्य ने जोर देकर नहीं पूछा। उसकी हेल्थ रिपोर्ट पहले से काफी बेहतर थी और समय पर दवा और सुनैना की देखभाल की वजह से उसकी बीमारी काफी ठीक हो रही थी। इसलिए घर के अंदर आते ही आदित्य एकदम से सुनैना को गले लगाते हुए बोला, थैंक यू सो मच सोना। थैंक यू फॉर व्हाट? सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। फॉर लविंग मी सेल्फलेसली, फॉर केयरिंग मी, ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, फॉर कमिंग इन माई लाइफ एंड नॉट गिविंग अप ऑन मी, and so many reasons, like everything you did every day. आदित्य उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। सुनैना ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे इशारे से नहीं में सिर हिलाकर चुप रहने को कहा और फिर कसकर उसके गले से लग गई। इस बार उसके गले लगते हुए सुनैना थोड़ी सी भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात का वक्त। उस दिन अनय को गले लगाने के बाद से मनस्वी उससे परहेज कर रही थी। पिछली रात वो अपनी माँ के साथ उनके कमरे में ही सो गई थी। उसने बहाना बनाया कि वो उनका ध्यान रखना चाहती है और उनके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती है। अनय काफी देर तक उसके कमरे में आने का इंतजार करता रहा। उन दोनों को एक साथ एक ही कमरे में रहते हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ था और अनय को जैसे उसकी आदत पड़ गई थी, इसलिए पिछली रात उसे ठीक तरह से नींद नहीं आई। लेकिन फिर भी वो खुद से जाकर मनस्वी से बात नहीं कर पाया। मनस्वी उसके लिए कुछ खास नहीं करती थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ के सामने वो उसके साथ अच्छी तरह पेश आती थी। कभी कभार वो उसका हाथ पकड़ लेती थी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती थी। पता नहीं क्यों अनय को ये सब सिर्फ दिखावा नहीं लगता था, लेकिन उस दिन इस तरह से गले लगाने के बाद से वो अजीब बर्ताव कर रही थी। आज भी डिनर करने के बाद से अनय अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों वो इस तरह का बर्ताव कर रही है। अब उसे अपनी माँ की फिक्र भी नहीं है और वो हमेशा इस तरह अपनी मनमानी कैसे कर सकती है। मेरे मना करने के बाद भी उसने ये सब कुछ शुरू किया और अब फिर से अपने मन का ही कर रही है, अनय गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बोला। दूसरी तरफ मनस्वी इस बात को लेकर परेशान थी कि उस दिन के बाद वो अनय से आंखें कैसे मिलाएगी, क्योंकि उन दोनों के बीच आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही वो दोनों ही एक दूसरे को लेकर कुछ भी महसूस करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों ने कभी बैठकर बातें भी नहीं की थीं। इसलिए मनस्वी को लग रहा था कि अनय जरूर उसे इस बात के लिए नकारात्मक रूप से देखेगा और उसे गलत समझेगा। इसके अलावा अगर वो इस बात के लिए स्पष्टीकरण मांगेगा तो वो क्या बोलेगी, क्योंकि उसने तो बस अनय को उदास देखकर उसे इस तरह से गले लगा लिया था। इसलिए ही वो पिछले दो दिनों से उससे परहेज कर रही थी, लेकिन आज रात वो कल की तरह रोज रोज अपनी माँ के कमरे में तो नहीं सो सकती थी। एक दिन उसने बहाना बनाकर वहाँ पर रात बिता दी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो रोज रोज इसी तरह का बहाना करेगी तो फिर उसकी माँ को भी शक हो जाएगा। इसलिए आज वो डिनर के बाद काफी देर तक हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। असल में उसका ध्यान टीवी देखने में नहीं था, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती वहाँ पर बैठी हुई थी घड़ी की तरफ देखते हुए। रात के 11 बज रहे थे और उसे लगता था कि थोड़ी ही देर में उसकी माँ या फिर अनय दोनों में से कोई तो सो जाएगा, तब वो अपने कमरे में चली जाएगी। मनस्वी ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, क्या हो गया था तुझे मनस्वी? हाँ माना वो तेरा पति है, लेकिन तूने तो कभी उसे ऐसी नज़र से नहीं देखा और तुम दोनों के बीच कभी भी इस तरह का कोई पल नहीं हुआ, ना उसने कभी कोशिश की। और मैं तो उसे ये शादी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने ये शादी सिर्फ पैसों के लिए की, अपनी कंपनी बचाने के लिए, इसलिए मैं इसे शादी ही नहीं मानती। तो फिर क्यों उस दिन मुझसे ऐसा हुआ जब वो इतना ज्यादा उदास और दुखी लग रहा था? मनस्वी के मन में ये सब कुछ चल रहा था और वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। तभी निराशा से दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए बोली, आह पागल हो जाऊंगी मैं इस तरह से तो, लेकिन कुछ तो समाधान निकालना ही होगा, आखिर कब तक इस तरह से भागूंगी? वैसे मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अगर ये इतनी बड़ी बात नहीं है तो फिर मैं इतनी घबराई हुई और असहज क्यों महसूस कर रही हूँ फिर से उसके सामने जाने में, जबकि पहले तो मैंने ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, मनस्वी ने खुद से ही कहा। वो कौन, क्या सोच रहा होगा, किसके बारे में सोच रही हो यहाँ बैठकर, और अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? पीछे से अनय की आवाज़ सुनकर मनस्वी ने एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अब तक सोए नहीं? कोई नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, मनस्वी उठकर खड़ी होते हुए बोली। वो एकदम से उसे वहाँ देखकर थोड़ी घबरा रही थी। एक बार तुम बोलोगी तो वो भी चलेगा, ये इस तरह से घबरा क्यों रही हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ, और वही पूछा मैंने, किसके बारे में सोच रही हो? वैसे इतना लेट हो गया है, तुम्हें सोना नहीं है? अनय ने एकदम सामान्य रूप से कहा। इतना लेट हो गया है तो तुम क्यों जाग रहे हो अब तक? और मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं बाद में सो जाऊंगी। तुम जाओ, मनस्वी ने उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही उससे सवाल पूछते हुए कहा। बाद में कब, ऑलरेडी रात के 11 तो बज रहे हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना भी होता है, और मुझे भी, अब चलो, वैसे भी तुम्हारी वजह से कल रात भी सो नहीं पाया, अनय ने एकदम से शिकायत करते हुए कहा। क्या मतलब मेरी वजह से? और कल तो मैं वहाँ कमरे में भी नहीं थी, तो फिर कैसे डिस्टर्ब हुआ? तुम हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाने की आदत हो गई है, मनस्वी फिर से अपने पहले वाले लहजे में ही बोली। तो अनय बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, मनस्वी मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, और हर बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो, मैं तो बस ओके लीव इट, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे साथ बात या बहस करने का। इतना बोलकर अनय ने बहुत ही अफसोस के साथ एक नज़र उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इस बार उसने मनस्वी से साथ आने के लिए नहीं कहा। उसे इस तरह मायूस होकर वहाँ से जाता देख मनस्वी खुद को ही डांटते हुए बोली, क्या कर दिया तूने मनस्वी, बेवजह ही उसे फिर से दुखी कर दिया, सिर्फ चुपचाप सोने के लिए ही तो बोल रहा था, वैसे कल रात को सो क्यों नहीं पाया, क्या वो मेरा इंतजार कर रहा था मेरे कमरे में आने का? ये बात सोचते हुए मनस्वी को पता नहीं क्यों मन में गुदगुदी हुई, और वो तुरंत ही वहाँ हॉल में चल रही टीवी बंद करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जब वो कमरे में आई तो उसने देखा कि अनय चुपचाप एक तरफ करवट लेकर लेटा हुआ है और उसने कमर तक कंबल ओढ़ा है।
वो जाग रहा था, लेकिन उसने सिर्फ अपनी आँखें बंद की हुई थीं और सोने का नाटक कर रहा था। मनस्वी ये समझ नहीं पाई और उसे लगा कि अनय सो गया है, इसलिए बिना कोई आवाज किए वो भी चुपचाप कमरे के अंदर आई और उसने दरवाजा बंद किया और बेड पर दूसरी तरफ आकर लेट गई। पहले वो एकदम सीधी लेटी हुई ऊपर छत की तरफ देख रही थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे नींद नहीं आई तो वो करवट लेकर एक तरफ मुड़ गई। अब उसे अपने दाहिनी तरफ लेटे अनय की पीठ नजर आ रही थी। क्रमशः